हम दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे जो यह है कि शिष्य की बुलाहट है तो शिष्य की कीमत भी है, कॉस्ट ऑफ डिसिप्लिन। एक शिष्य का एक कीमत, ये जरूर एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मसीह जीवन संसार के जीवन से बिल्कुल अलग है। और आज सुबह के समय आपके साथ मत्तियुस के 10 अध्याय को पढ़ा गया, लेकिन कृपया मेरे साथ दिखाने मत्तियुस का 16 अध्याय और 16 अध्याय और 10 अध्याय बहुत मिलता जुलता है, तो आप देखेंगे मत्तियुस 16 अध्याय कुछ पदों को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर 16 अध्याय के आरंभ से आगे पढ़ेंगे। उस पाठ को समझना चाहेंगे जो शिष्यता की कीमत के बारे में है। 24 पद से प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, 16 अध्याय के 24 पद से, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खोए तो उसे क्या लाभ। इन पदों का या इन बातों का वर्णन करते अगर तीनों सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के इन कथन का वर्णन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मत्ती 16 अध्याय 21-28 पद तक हम बात को देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह का समय निकट आना है और तब वो इन बातों कहते हुए आगे बढ़ते हैं। मरकुस 8 अध्याय 31 पद से लेकर 38 पद तक, 8 अध्याय के 31 से 38 पद तक इन्हीं बातों को हम देखते हैं जो मरकुस कह रहा है। लूका 9 अध्याय 18 से 27 पद तक हम इन्हीं बातों को देखते हैं जो लूका कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का समय निकट है, वो किस प्रकार से इनकी बात कहते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं, यदि तुम मेरे शिष्य हो और अगर मेरे शिष्य होकर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें अपना क्रूस उठाना है। हमारे बीच प्रभु के एक सेवक आते हैं, पास्टर आएंगे, आपने उनको कई बार सुना है, और वो हमेशा बात कहते हैं कि दो क्रूस है, एक क्रूस यीशु मसीह का क्रूस है और यीशु के क्रूस को हम नहीं उठा सकते। केवल एक व्यक्ति को हम पाते हैं जो शमौन कुमारी के बारे में वर्णन है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठा के चल रहे तो शमौन कुमार ने बुलाया कि वो उसके क्रूस को उठा के ले चले और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको सामर्थ दिया चाहता कि कुछ देर तक उस क्रूस को लेकर चला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस को लेकर उस स्थान पर जाना था ताकि वो मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान करे। उस क्रूस को कोई और दूसरा नहीं खींच सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको आमंत्रित किया है, ये उसका निमंत्रण है, ये उसकी बुलाहट है, ये उसकी चाहना है कि हर एक उसका शिष्य है, हर एक उसका अनुयायी अपने क्रूस को उठाकर चल सके। क्रूस को उठाकर चलने मतलब में हम देखते हैं यहाँ पर ईस्टर के समय में प्रोसेशन निकलता है और एक बहुत बड़ा क्रूस बनाया जाता है और लोग कंधे पे लेकर उसको चलते हैं, बहुत सारा तमाशा होता है। दूसरे देशों में इसराइल में आज भी एक पता है कि उसके समय में लोग अभी भी बहुत सारे लोग इस बात को लेकर क्रूस बनाकर लेकर चलते हैं और सोचते हैं कि अब उसके दुख में से मागे हुए, लेकिन उससे मतलब इस तरह बातों से मतलब नहीं है। जब हम 16 अध्याय में आते हैं बाइबल को पढ़ते समय हम क्रमों को देखते चले आते हैं और क्रम में बहुत ही कायदे से एक चीज जुड़ी हुई है और इसलिए जब 16 अध्याय तुम जल्दी से कुछ बातों में आपके सामने रखूंगा। इसमें 6 खंड है और 6 खंड में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह खंड को वर्णन करते हुए एक कदम आगे बढ़ करके तब शिष्य से कहते हैं तुम्हें मेरा क्रूस उठाना है। पहले खंड में जब देखते हैं तो पहले पद से लेकर 4 पद तक वो फरीसी और सदूकियों से बात कर रहे हैं और वो उनसे कहना चाह रहे हैं तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है इसलिए तुम उसे चिन्ह की मांग कर रहे हो, समय का मैं इसलिए व्यक्त नहीं जाऊंगा। तब दूसरा खंड है 5 पद से लेकर 12 पद तक और यहाँ पर आपको शिष्य से बात करते हैं और शिष्य से बात करते करते तुम्हारा विश्वास थोड़ा है, तुम अल्प विश्वास हो, इसीलिए वो 8 पद में कहते हैं परंतु यीशु ने जानते हुए इतना देर पर विश्वास नहीं। और प्रभु ने बार बार इससे पहले मत्ती में करीब 4 बार प्रभु यीशु मसीह को बार बार चिताया हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों। और मत्ती के सुसमाचार में करीब 7 बार हम इस बात को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा एक तुम विश्वास पे कम हो। अल्पविश्वासी 17 अध्याय में भी 2 बार कहता है कि अपने विश्वास की कमी के कारण वो प्रभु काम को नहीं दे सके। इस रीति से हम देखते हैं तो यहाँ पर पहले वो विश्वासी नहीं है, उनके पास विश्वास नहीं है, यहाँ पर शिष्य आगे बढ़ रहे लेकिन अभी उनका विश्वास थोड़ा है, धीरे धीरे वो विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आगे चलते हैं 13 पद से लेकर उसके 16 पद तक हम तीसरे खंड में एक और बात देखते हैं कि अब इनका विश्वास बढ़ रहा है और वो मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। किस प्रकार स्वीकार करें यदि अभी पूर्ण ज्ञान उनके पास नहीं है, यदि पूर्ण ज्ञान नहीं है लेकिन उनका विश्वास बढ़ रहा है और विश्वास को बढ़ते हुए वो यीशु को मसीह कहकर स्वीकार करते हैं। और तब अभी हम स्थिति पृष्ठभूमि में जाएंगे, तब उसके बाद आगे जो खंड है 17 पद से लेकर 20 पद तक, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि विश्वास का प्रतीक क्या है, विश्वास का परिणाम ये होगा कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और उसके बाद कलीसिया की स्थापना होगी और कलीसिया के तुम भागी बनोगे। ये जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने द्वारा है। और पहली बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कलीसिया के भेद को प्रकट कर रहे हैं। कलीसिया तो परमेश्वर का राज्य है जो अनंत तक के लिए स्थापित किया जा रहा है। स्थानीय कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आने वाले हैं, आएंगे जो विश्वव्यापी कलीसिया अनंत काल तक उसके राज में रहेगी और वास करेगी। तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस बात को 4-5 खंड में कहते हैं जो 21 पद से लेकर 23 पद तक है। ये कलीसिया की स्थापना कैसे होगी, इस कलीसिया की स्थापना के लिए क्या होगा, इस नए समुदाय की स्थापना कैसे होगी, ये नया समुदाय कैसे बनेगा, जो समुदाय स्वर्ग में प्रवेश करेगा, जो सनातन परमेश्वर की होता है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ेगा। और वो अपने बलिदान का वर्णन करते हैं, ये दूसरी बात अपने मुख से वो अपने भविष्य को संकेत करते हुए कहते हैं कि अवश्य है कि मैं दुख उठाऊं, मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं। शिष्य अभी नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से वापस आऊंगा इस बात। तब उसके बाद तब अंतिम खंड जो हम देखते हैं वो 24 पद से लेकर है जो 26 पद तक आगे तक है, जिसमें प्रभु कहते हैं ठीक है तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, तुम्हारा विश्वास थोड़ा है, तुम्हें और विश्वास बढ़ना है। तब उस विश्वास को वो स्वीकार करते हैं, निकाल करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और तब उसके बाद इस अधिकार के कारण परिणाम यह है कि कलीसिया की स्थापना होगी। यीशु मसीह वो कलीसिया का नेव है, पत्थर है, कोने के पत्थर है, उस आधार पर कलीसिया की स्थापना होगी और वो कलीसिया स्वर्ग का प्रदर्शन है, स्वर्ग के राज का प्रदर्शन है। और उस कलीसिया को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए, उस नए राज को देने के लिए, नए समुदाय को बनाने के लिए यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ेगा। लेकिन अगर उस स्थान में तुम आगे जाना चाहते हो, प्रवेश करना चाहते हो, तो तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी, तो तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और उस कीमत चुकाने के बारे में वो अंतिम खंड में बात। तो 16 अध्याय में ये लिंक एक से एक आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आइए थोड़ा सा पीछे जाएंगे। जब 16 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह दलील में, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अपने शिष्य के साथ जा रहे हैं। 13 पद है, जब यीशु कैसरिया में, कैसरिया फिलिप के प्रदेश में आया तो अपने चेलों से पूछने लगा। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा देने का एक तरीका है, हमेशा जब भी उन्होंने अपने शिष्य को शिक्षा दी अलग अलग समय में अलग तरह से बात करते हैं। उन्होंने वहां की परिस्थितियों को देखा, उन्होंने वहां के लोगों को देखा, उन्होंने वहां की राजनीतिक और आत्मिक और आध्यात्मिक परिस्थितियों को देखा और उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वो इन सारी बातों करते हैं। जब कैसरिया में आते हैं, ये फिलिप कैसरिया का नगर, हेरोदेस ग्रेट जो महान हेरोदेस था, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 25 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। अब ये सच एक फैलता चला जा रहा है और इस स्थान में जब हम आगे चलते अध्ययन करते हैं क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को आरंभ किया, क्यों प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं और कहते कहते तब क्रूस उठाने की बात कर रहे हैं। 3 मुख्य बातें वहां की। पहली चीज, इस नगर में, ये बहुत प्रसिद्ध नगर था, बहुत फैला था, 3 मुख्य ऐसी बातें थी कि एक वहां पर देवता था जिसको पैन देवता कहते हैं, पीएम पैन देवता कहते हैं, और वो देवता के जो बाल देवता के रूप में आकर यहाँ पर आया था और लोग वहां पर उसकी पूजा करा करते थे। दूसरा जो कैसर है, कैसर को लोग वहां पर छोटा ईश्वर करके मानते थे और जगह जगह पर वहां पर मूर्ति बनी रहती थी और उन लोगों जाकर उसके सामने झुकना पड़ता था, झुकना पड़ता। अगर वो नहीं करते थे, कैसर का सम्मान नहीं करते थे, तो वो उनके लिए एक तरह से निंदा मानी जाती थी और वो देशद्रोही माना जाता था। ये परिस्थिति। और कैसर एक पदवी थी, जैसे पुराने नियम में हम फिरौन पदवी को देखते हैं, आज गवर्नर पदवी को देखते हैं। अगर हम देखेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, प्रेतों में जाएंगे, कई बार कैसर 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 शब्द होता है और हर कुछ वर्ष बाद दूसरा व्यक्ति वहां पर पद संभालता है और जो उसको इसी नाम से पुकारा जाता है। मैं इस तरह चीजों का आपके सामने वर्णन कर रहा हूं कि जब परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करते हैं, शायद परमेश्वर इसीलिए हमारे हाथों में सेवा दी है कि हम आपको इन चीजों को और सिखाने का प्रयास करें, तब उस प्रश्न में हम जाएंगे जाते हैं, तब उसको और अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो पहली चीज ये थी। दूसरी बात, तीसरा, वहां पर यहूदी लोगों का वास था और यहूदियों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति व्यवस्था को नहीं मानता था तो वो ईश निंदा करता था, ईश निंदा करता। और अब सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के साथ अंदर आ रहे हैं और ये प्रस्तुति है वहां पर, अगर आप पैन देवता की आराधना न करें, उसकी उपासना न करें, उसके सामने न झुके, तो आप ईश्वर को नहीं मानते, आप परमेश्वर को नहीं मानते। अगर आप कैसर के सामने ना झुके तो आप उस देश का, उस स्थान का आप अनादर कर रहे हैं, आप देशद्रोही हैं। अगर आप व्यवस्था को नहीं पालन कर रहे तो आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। और लोगों के सामने यीशु के लिए यही था कि यीशु व्यवस्था को नहीं मानता। और ऐसी परिस्थिति, इन सारी परिस्थितियों में जब वो प्रवेश कर रहे हैं, तब वो अपने शिष्य से इस तरह की बात करके आगे बढ़ते। अब जब प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते तो कहते हैं, मनुष्य का पुत्र कौन है? लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कहते हैं कुछ एलिया, और अन्य यर्मिया या तो नबियों में से। तब उसके बाद परमेश्वर ने एक अद्भुत रेवलेशन, एक स्वर्गीय प्रकाशन परमेश्वर ने पत्रस को दे दिया। पत्रस उन शिष्यों में 12 शिष्यों में एक है, हमेशा आगे बोलता है, निर्बल है, जरूर कुछ चीजें गड़बड़ भी है, पर उसने कहा, तुम लोग जो कुछ कहते हैं कहते हैं, पर इन शिष्यों से पूछना चाह रहा है। ये शिष्य बुलाए गए लोग, ध्यान दीजिएगा, शिष्य चुने हुए हैं, शिष्य बुलाए गए हैं, इसके पीछे चल रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा था कि जिसने वचन को सुना, जो बुलाया गया है, जिसको जिसने उसके पीछे चलने का निर्णय किया है, वो शिष्य है। मैं और आप यहां पर यदि हम कहते हैं मसीह हैं तो हम शिष्य हैं, हम शिष्य हैं तो हम मसीह हैं। पिछली बार हमने प्रेतात्मा में से देखा था, और हम भी इस बात का दावा करते हैं कि हम बुलाए गए। आप प्रभु यीशु मसीह इन शिष्य से पूछा, ठीक है लोग कुछ भी कहें, लेकिन तुम क्या कहते हो, तुम मेरे बारे में क्या विचार रखते हो? हम यहां पर हैं, लोग ना केवल इन चीजों को देख रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों को देख रहे हैं जिसके बारे में मैंने भी बता दिया है, अब तुम क्या कहते हो? तो वो कह रहा है, उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? शमौन पत्रस ने उन शिष्यों के व्यवहार में उत्तर दिया, पहले उत्तर बोला, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यानी कौन था? हम जान गए हैं, हम पहचान गए हैं, हमने जान लिया है कि लोग तुझे एलिया समझे, लोग तुझे यूहन्ना समझे, लोग तुझे नबी समझे, लोग तुझे कुछ और समझे, आज भी इस संसार में यीशु को लोग तरह तरह से देखते हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों में, हमारे अन्य लोगों में। लेकिन एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, जिसने उसके पीछे चलना आरंभ किया, उसके लिए यीशु कौन है? मेरे प्रियो, वो अन्य देवी देवताओं के समान नहीं है, वो विशिष्ट है। और जब तक हम इस बात को निश्चय से जानना चाहें, यीशु कौन है, हम हो सकता है हम थोड़े से चलेंगे लेकिन हमारा विचार, हमारा मन, हमारा सब कुछ इसी बात में और बातों में टिकड़े रहे। और यही कारण है कि हम उस कीमत को चुकाने से वंचित हो जाते हैं शुरुआत। तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इन बातों को कहते हैं कैसे, तब 21 पद में तब उसने अपने बारे में कहा, जो मैं इसके तरफ चर्च के बारे में, तब उसने कहा उस समय से यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा। क्या बताने लगा? अवश्य है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याचकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं, केवल दुख ना उठाऊं लेकिन बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन मैं जिलाया जाऊं। शिष्यों से कह रहा है तुम मुझे मसीह कहते हो और मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं तो मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं? मैं तुम्हारे पहले होकर तुम्हारे लिए एक कीमत चुकाने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारे लिए एक कीमत चुकाने जा रहा हूं और वो कीमत क्या है कि मुझे उस क्रूस की मृत्यु को लेना। मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श हूं और उसी कीमत चुकाने के द्वारा कलीसिया की स्थापना होगी और तुम अनंत काल के लिए एक निश्चय को प्राप्त करोगे विश्वास करने का। तब उसके बाद अब पतरस इस बात को सोचकर, क्योंकि मैंने कहा पहले कि बोलने में तेज था, वो सोचता मैं बहुत बुद्धिमान हूं, और तब पतरस एकदम से कहता है अरे पतरस से अलग ले गया, यीशु को अलग ले गया। पतरस सबसे बड़ा काउंसलर है, वो अपने आप को इस समय यीशु से ज्यादा ऊंचा समझता है। उसने कहा अरे मैंने अभी कहा था तो प्रभु ने मुझे बहुत शाबाशी दी थी, अब तो मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा एडवाइस हूं, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैं प्रभु यीशु से ज्यादा समझता हूं। ये जो दुख उठाने की बात कर रहा है, मारे जाने की बात कर रहा है, मृत्यु की बात कर रहा है, ये हमारे समझ नहीं, शायद ये समझ नहीं पा रहा क्या कर रहा है, शायद यीशु समझ नहीं पा रहा कि क्या कर रहा है। यीशु तो समझ रहे थे लेकिन पतरस नहीं समझ पा रहा, पतरस समझ नहीं पा रहा। और तब पतरस प्रभु यीशु मसीह को अलग ले रहा है और सोचता है कि अब दोबारा मुझे थपथपाएगा प्रभु, अब क्या बढ़िया मुझे काउंसलिंग दे रहा है, पतरस तेरी जो सलाह है बहुत अच्छी, क्योंकि पहले पतरस की वाहवाही हो चुकी थी। अब पतरस को अलग ले आता है और लिखा हुआ है वो अलग लेकर कह रहा है हे प्रभु परमेश्वर ना करे, अरे परमेश्वर ने तो ठहराया है, परमेश्वर की योजना है, पतरस परमेश्वर की योजना नहीं समझ रहा है, परमेश्वर परमेश्वर की जो कुछ भी इच्छा है उसको नहीं जाना है, लेकिन उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छा को जानता है और वो उसको पूरा करने के लिए आया है। वो सोच रहा है यीशु नहीं समझ रहा है, लेकिन पतरस से गलत सोचता है क्योंकि वो सब नहीं जानता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। और तब वो कह रहा है परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होने पाए। मेरे प्रियो क्यों आगे भी हम जब 17 अध्याय में आते हैं हम इन्हीं बातों को देखते हैं, वहां पर भी पतरस के आराम को देखना चाह रहा मसीह जीवन में आकर जरूर परमेश्वर में शांति देते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हमें आनंद मिलता है, प्रभु यीशु मसीह में हमें विश्राम मिलता है, लेकिन जिस प्रकार का संसार का विश्राम है, जिस प्रकार की संसार की आशीष है, जिस प्रकार के संसार की चीज वो नहीं है, बदलाव है, परिवर्तन है। और पतरस से सोचा था कि संभवतः अगर ये ऐसा होगा तो हमारे पास जो हम अभी तक बड़े उसके साथ जा रहे हैं, जब यीशु जाते थे आश्रम कम करते थे, लोग यीशु के साथ आवे करते उनकी बीमारी भाई आई उसके शिष्य आई उसके शिष्य, लेकिन उस बात को नहीं समझ पाया। तब आगे चलते क्या होता है, चल उसने मुड़कर पतरस से कहा हे शैतान मुझसे दूर हो। पतरस को इस समय कंट्रोल करने वाला कौन है? पतरस को नियंत्रित करने वाला कौन है? पतरस को इस समय नियंत्रित करने वाला शत्रु शैतान है, जो जानता है कि अगर यीशु मसीह क्रूस पर जाएगा तो मेरी हमेशा हमेशा के लिए पराजय होगी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जाने से पहले उसके परीक्षा में ले गया, इसीलिए उसने बार बार इस बात का प्रयास करा कि यीशु क्रूस पर ना जाने का, क्योंकि क्रूस पर शैतान की हमेशा हमेशा के लिए अनंत पराजय थी। और इसलिए यहां पर वो कहता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा शैतानों से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य के बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर की बात क्या है? परमेश्वर की बात यह है कि यह संसार हमारा नहीं है। परमेश्वर की बात क्या है कि परमेश्वर के साथ चलना, उसके राज्य को प्राप्त करना बिना त्याग के, बिना उसकी इच्छा के पूरा नहीं हो सकता। और इसीलिए पिछली बार जब हम अध्ययन करते कि यदि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। मेरे प्रियो, हम मानवीय स्वभाव में है और मानवीय स्वभाव में होने के नाते हमारे करीब बार मुश्किल होता है। इसीलिए तो हमें परमेश्वर की जरूरत है, इसीलिए तो हमें उसे प्रार्थना करनी है, इसीलिए उसके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर हमसे नहीं उसका प्रभु आप पत्रस नहीं समझ पा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो कहता है तू ऐसे मनुष्य की बातों को मना रहा है। तब उसके बाद 40 वर्ष से लेकर आप प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये भेद की बात करते हैं, और इस भेद की बात करते हुए वो क्या कहते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्तियुस के 10 अध्याय में हम देखते हैं 8 और 9 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कई सारे आश्चर्यकर्मों का वर्णन 5, 6, 7 पहाड़ों से मत्ती 1 अध्याय में यूहन्ना का जन्म है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में संबंधित बातें हैं, 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म है, 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा लेना है, 4 अध्याय में परीक्षा और उसके साथ भी होने वाला दृष्टांत है, 5, 6, 7 अध्याय में हम उन बातों को पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज के नियम के बारे में वर्णन करते हैं। और 8वें और 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कई सारे आश्चर्यकर्म करते हैं, 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मत्ती को बुलाते हैं जो महफूज लेने वाला है, और तब 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उन शिष्य को चुनते हैं और शिष्य को चुन करके एक निर्देश देते हैं कि तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन ये ही करना पर तुम्हारे साथ ऐसा हो जिसको भी हमने पढ़ा या कर्म इस तरह से प्रभु के वचन में चलता। आइए 10वें अध्याय में आइए, 10वें अध्याय में जिसको हम पढ़ रहे हैं, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह खास तौर से 34 पद में वो कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहा ये ना सोचो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराया हूं, मैं मेल कराने नहीं परंतु तुम्हारे तलवार चलाया हूं, मैं तो इसलिए आया हूं मनुष्य उसके पिता पुत्री को उसकी माता और बहू को उसकी सास और विरुद्ध कर दूं, और मनुष्य के शत्रु उसके घर के लोग होंगे, जो मुझसे अधिक अपने माता पिता से प्रेम करता है वो मेरे योग नहीं, जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है वो मुझसे योग नहीं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे योग्य नहीं। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे योग्य नहीं, मेरे योग्य नहीं, मेरे योग्य नहीं। कौन उसके योग्य नहीं है? जिसके जीवन में प्राथमिकता संसारिक संबंध है, शारीरिक इच्छाएं हैं और इस संसार की भौतिक वास्तव के प्रति आकर्षण है। अगर उसके जीवन में प्राथमिकता संसार है, संसार की वस्तुएं हैं, संसार की चीजें हैं और परमेश्वर उसके जीवन में प्राथमिकता नहीं है, वो उसके योग्य नहीं है। और इसलिए जब हम चुनाव करते हैं तो चुनाव के समय में यदि मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं तो मेरे जीवन में चुनाव की बड़ी भारी आवश्यकता है। हर समय हर कदम पर मुझे चुनाव करना, और चुनाव में ये देखना है ये प्राथमिकता क्या है, क्या मेरी प्राथमिकता परमेश्वर के वचन के आधार पर है, क्या मेरी प्राथमिकता परमेश्वर को आदर देने की है, क्या मेरी प्राथमिकता परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, यदि मैं अपने आप को विश्वासी कहता हूं और मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के वचन का प्रेम नहीं है और मैं कहता हूं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं व्यस्त हूं, मैं सबसे बड़े बहाने वाले हूं, मैं परमेश्वर को प्रेम नहीं, मेरे जीवन में आलस है, मेरे जीवन में सुस्ती है, मेरे जीवन में प्राथमिकता कोई और है, परमेश्वर का वचन नहीं। और इसलिए क्योंकि इस वचन के बिना हम परमेश्वर को जान ही नहीं सकते, परमेश्वर के वचन के बिना हम परमेश्वर की योजना को जान नहीं सकते, उसका मन, उसका मस्तिष्क, उसकी इच्छाएं, उसकी चाहना, उसकी भावना कहां कैसे जाऊंगा, इसके द्वारा जाऊंगा जब मैं इसमें अपने आप को देता हूं और देता हूं, इसके द्वारा और इसलिए यदि मुझे प्रभु में बढ़ना है तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। भरने जैसे जल के लिए प्यास, परमेश्वर का वचन जल है, परमेश्वर का वचन जीवन है, वो होना है। और एक अगर हम शिष्यता की बात करते हैं, मैं भी दूसरी चीज मानने से पहले जब कॉस्ट पे करने वाली बात कर रहे हैं, कीमत चुकाने वाली बात करते हैं, शुरुआत संबंध से होती है कि मैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध को दृढ़ करने के लिए कितना अधिक कीमत चुकाने तैयार हूं। सुबह उठ के मेरी नींद प्यारी है, मेरा मोबाइल प्यारा है, मेरी टीवी प्यारी है, मेरी चाय प्यारी है, या सुबह होकर परमेश्वर का वचन मेरे लिए प्यार, कभी तो हो सकता है। लेकिन अगर आदत नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप के सोच। और मेरे प्यो, इसीलिए चूंकि वचन हमारे जीवन में नहीं है, वचन को हम खा नहीं रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं, इसलिए हम निर्भर है। सो पहली बात, अगर हम हमारे जीवन में परमेश्वर पात्रता नहीं है, हम उसके योग्य नहीं। सो यदि कीमत चुकाने के हमें तैयार होना, यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के, हम चर्च में आ जाएंगे, कोई हमारी पात्रता कर देगा, कुछ हमारी सहायता हो जाएगी, ठीक है। कलीसिया प्रेम में होकर, संबंध में होकर, एक दूसरे की चिंता में होकर दूसरी चीज कर, लेकिन अगर हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य कुछ दूसरा है, प्रभु पीछे है, तो हम यीशु के शिष्य हैं। मसीह जीवन में मोटिव बहुत महत्व करता है, हमारा मनसा बहुत महत्व रखती है, हमारी मनसा क्या है। और तब प्रभु यीशु मसीह आगे चल के 16 अध्याय में कुछ बात कहते हैं, वो कह रहे हैं ठीक है, जो कोई ऐसे करे, आप पहली बार मेरे पीछे चलना चाहे, पहली बार तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे। क्रूस का मतलब क्या है? हम पुराने गलतियों में कई परमेश्वर के वचन में की जगह आते हैं। पुराने समय में, पुराने नियम में लोगों को काट पर लटकाया जाता, धीरे धीरे उसका रूप तरीका बदल गया, उसका जो काट का था वो उसका डिजाइन बदलता गया, डिजाइन बदलता गया। आज तो हमारे घरों में क्रूस बहुत पॉलिशदार लगी रहती, बहुत प्यारी है, और कई घरों में तो आज भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए हुए, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए, क्रूस खाली है, क्रूस खाली, आज भी हमने उसको लटका पहचान। और जैसे आज देखते इस प्रकार की नहीं, लेकिन क्रूस का मतलब यह था कि जब एक व्यक्ति को दंड दिया जाता था रोमी शासन में, उस समय में भी और यहूदी लोग के उसमें भी, ये था कोई भी व्यक्ति अगर ईश निंदा करता, कोई भी व्यक्ति देशद्रोही का काम करता, या कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करता जो सामाजिक रीति से दूषित है, बहुत घृणित है, तो उसको उस लट्ठे को उसका उस समय वजन जो होता था 90 पाउंड का होता था, और वो गोल होते थे, गोल लट्ठे, और उन गोल उसको लाद कर कंधे पे ले करके और शहर के बीचों बीच में से होकर जाना पड़ता था, और जो अगर कोई उसको देखता था वो जान जाता था कि ये व्यक्ति क्या, इसको किस प्रकार से, क्यों ये लेकर जा रहा है, इसको दंड दिया जा रहा है, और लोग समझ लेते थे या तो इसने देशद्रोह का काम किया है, या इसने राजा की निंदा की है, या इसने वो मूर्तियों के सामने नहीं झुका है, या व्यवस्था का उल्लंघन किया है, ये सारी चीजें। अब उसके सामने वो एक ऐसा था जो समाज उसको तिरस्कारता था, समाज के सामने उसको लज्जा से सामना करना पड़ता था, एक जो उसकी पीड़ा होती थी, उस पीड़ा का उसको कष्ट होता था, उसको लेके चलना पड़ता था, और यहां तक कि कई लोग उसको यात्रा में चलते चलते गिर जाते थे, उठते थे, गिरते थे, उठते थे, और यहां तक कि वो मर भी जाते थे। और उस चीज को लेकर अभी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं गए, लेकिन वो वहां पर देख रहे थे यहां पर इस समाज में, इस लोगों के बीच में क्या होता है, और इसलिए वो क्रूस का उदाहरण देके वहां पर अपने शिष्य को समझाने का प्रयास कर। क्या मतलब? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मरूंगा तो ये सच है, वहां पर किस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु को तिरस्कारा गया, प्रभु यीशु मसीह को लज्जित होना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से लोगों ने अपमान किया, वो क्लेश वो पीड़ा वहां से शुरू हो गई थी, जबकि वो गस्तमनी के बाग में रात में प्यार प्रार्थना करने बैठा था। प्रार्थना करते लिखा हुआ है उसका पसीना खून की बूंदों के समान टपक रहा था। वेदना पीड़ा उस समय से आरंभ हो गई थी। वहां नहीं कि केवल क्रूस पे उसने पीड़ा नहीं सही, लेकिन उसकी पीड़ा को उस समय से आरंभ हो गई थी जिस समय उसने जान लिया था कि मेरा समय आ गया। वो लज्जा, वो क्लेश, वो अपमान, वो कष्ट, वो तिरस्कार, वो सब कुछ। और ऐसे समय में दो चीज मनुष्य पर प्रभाव डालती थी सामूहिक से, एक तो मनुष्य की चिंता और एक मनुष्य की लज्जा। इसीलिए जब दसवें अध्याय को आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के मन को तैयार कर रहे हैं, और जब दसवें अध्याय में आप पढ़ते हैं तो बार बार प्रभु यीशु मसीह इन्हीं दो की चिंता बातों की शिक्षा देते हैं। वहां पर तुम चिंता ना करना, तुम मत डरना, चिंता मत करना, लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमारा अपमान करेंगे, लोग हमें लज्जित करेंगे, लोग हमारा तिरस्कार करेंगे। ओ मेरे प्रियो, जब भी कोई ऐसी बात आती है हमारे जीवन में, जब हमें खड़ा होना पड़ता है, परमेश्वर को प्राथमिक रखना पड़ता है, हमारे सामने ये दो चीज आ जाती है। एक चिंता आती है, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। ये चिंता हमें पकड़ती है, और किसी ने कहा है ये चिंता कई बार चिता के समान बन जाती है जो हमें जला देती है। दूसरा डर मनुष्य का, और जो स्थल हमने पढ़ा मती 10 अध्याय घर में जाके फिर पढ़ेगा आप आगे से, तो बार बार प्रभु यीशु मसीह इस बात पर मत डरना। प्रभु यीशु मसीह निर्डरता के साथ उस हो जा रहे थे, लेकिन अगर पत्रस उनका लग ले गया था तो पत्रस जानता था ये कैसा है, अगर उसने कहा है तो क्या होगा, तो पत्रस सोचा था शायद वहां में भी कल ऐसे सामना करना है। और तब प्रभु यीशु मसीह बात को कहते हैं, तो क्रूस उतारकर चला पहली बात प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता देना, अपने जीवन के निर्णय में परमेश्वर को प्राथमिकता देना पहली बात। दूसरी बात, इस समाज और संसार में हमें दृढ़ता से खड़े होना, क्योंकि संसार ये समाज कुछ सालों का हमारे लिए। मेरे प्रियो, हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ योजना बनाते हैं। पिछले दिनों में हमारे बीच में एक बच्ची रही यहाँ पर, चाहे मैंने बताऊंगा गोरखपुर से, जब वो बाराबंकी में सेवा आरंभ करी 79 में, भाई राजकुमार जानते हैं हमें, तो वो परिवार सबसे पहले हमारे जो परिवार जो आरंभ थे वो परिवार और ये बच्ची जो बच्ची थी उसकी माँ उस समय सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ी थी, हम वो चर्च में आए बड़े विश्वास। कुछ समय पहले हम और भाई अमित कुछ भाई लोग गए थे गोरखपुर, वो 20 साल लगभग 12 वर्ष से गोरखपुर चले गए, हमारा संबंध टूट गया, हम ना कोई बाबा ना कोई, लेकिन हम एक किसी कार्यक्रम में गए थे और मुझे वहां पर प्रार्थना करने की इच्छा दिया। जैसे मैं प्रार्थना करा था ये बच्ची ने जो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसके पास अब 2 बच्चियां थी, इसने देखा कह रहे अंकल है, तो जैसे मैं नीचे उतर के आया वो हमारे पास दौड़ कर अंकल मैं बातचीत हुई बताया बच्चों से मिलाया, और उसके हमने कहा ठीक है आप संपर्क करना कहा। कुछ समय बाद फिर हम लोग बाहर चले गए, वापिस आए उन्होंने करा, लेकिन बाद में पता चला 25 जनवरी को वो अपने स्कूल जा रही थी, अपने उस प्राइवेट जी में बैठकर पीछे से टक्कर मारी ट्रक है, वो नीचे गिरी जीवन मनुष्य का नहीं हम योजना बना सकते हैं, लेकिन अगर इस संसार में प्रभु ने हमें जीवन दिया उसके हाथ में परोसता है 70 साल 80 साल 100 साल। लेकिन हम किस जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं, और वो जीवन जो असंख्य वर्षों का जीवन है। प्रश्न यह है हमारी प्राथमिकता ये छोटे से काल के लिए है या हमारी प्राथमिकता अनंत काल के लिए, हमारी प्राथमिकता ये छोटे से 20 30 40 50 सौ साल के लिए है, ये हमारे पिता प्रभु के साथ अनंत काल के लिए। अगर हमारे पिता अनंत काल के लिए है तो हम क्रूस के अर्थ को समझेंगे। क्रूस में मसीह जीवन सरल नहीं होता, 40 वर्ष में प्रभु ने बहुत अनुभव एक छोटा अनुभव, जैसे मैंने प्रभु को पाया उसी के तुरंत उस समय बाद मेरा मित्र मेरे साथ और सबसे पहले मैंने उसके द्वारा पिटाई की। आज भी का तो निशान है मारा और किसे पिटाई करी, अस्पताल ले गया, टांके लगवा। मेरे प्रियो प्राथमिकता किया हमारे लिए ये छोटे समय के लिए है या अनंत काल के लिए? अगर हमारी दृष्टि अनंत काल के जीवन के लिए, जिस जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह पहले होकर उसने अपने आप को उस लज्जा को सहा, उस अपमान को सहा, उस तिरस्कार को सहा, उस क्लेश को सहा, सब कुछ को सहा, पहले होकर उसने सहा, तब उसने कहा जो मेरे पीछे होना चाहे, मेरे पीछे होना चाहे, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं अगर वो उस रास्ते पे चलेगा तो जहां मैं जा रहा हूं वो वहां पर ही जाएगा। हमारा प्रभु कहा गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग पर विराजमान, और जो तो उस पर विश्वास करेगा उसके पीछे चलेगा उसको वो इस पर स्थान। और इसीलिए यमुना 12 अध्याय में वो कहता है, यमुना 12 अध्याय उसके 24 पद में, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, जब मर जाता है तो बहुत सारा फल लगता है। और तब आगे चल के कहता है जो मेरे पिता की सेवा करेगा पिता उसका सम्मान करेगा, और जहां मैं हूं वो वहां फल देगा। यमुना उसका 12 अध्याय 24-25, जहां मैं हूं जब तक गेहूं का दाना गिरकर भूमि में मर नहीं जाता, अर्थात वो अपने अस्तित्व को जब तक समाप्त नहीं करता। हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारा पुराना स्वभाव कठिन है, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं, पर परमेश्वर हमारी मदद करता है और हम अंश 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 करके वचन कहता है हम उसके स्वरूप में बदलते चले जाते। तो क्रूस उठाकर चलना, पहली चीज उसको प्राथमिक दे देना, क्रूस उठाकर चलना, उसके उस मार्ग को स्वीकार करना जिस मार्ग से होकर वो गया है प्रभु यीशु मसीह गया। चाहे मुझे लज्जा सहनी पड़े, चाहे मुझे तिरस्कार सहना पड़े, चाहे मुझे अपमान सहना पड़े। हमारे बीच में अपने एक बहन है, मैं मनना खा जाते उनके परिवार के उनके अंकल प्रभु का धन्यवाद हो, मैं उनको बहुत सारे जानता हूं। 70 दशक एक चारों में सबसे पहले वो मसीह में आए थे, सबसे पहले में, और जब वो मसीह में आए थे उनको पेड़ पे बांध करके, पेड़ में बांध सिस्टर सूर्य हम पर बैठे हैं वो जाते हैं उनके बारे में, और पेड़ बांध करके उनको बांध दिया, कांटे मारे गए, मुंह में गोबर लगा दिया गया, उन्हें तुम्हें यीशु का इंतजार करना होगा, यीशु को छोड़ना होगा। आज की बात नहीं, 70-80 दशक की बात बता रहा हूं, आज से 40 साल पहले बात। लेकिन उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं यीशु का इंतजार नहीं करूंगा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो उन्हीं का कारण है जो आज उनका खानदान प्रभु में है और आसपास के कई लोग वहां पर विश्वास कर रहे हैं। प्राथमिकता क्या थी? कितनी ऐसी गवाही है जो हमारे आसपास है? मसीह जीवन इस पृथ्वी पे हमें त्याग करना सिखाता है, मसीह जीवन हमें इस पृथ्वी पे अपना इंकार करना, अपना इंकार करना मतलब क्या है? जो मैं स्वयं हूं मैं उसे कहना चाहता हूं मैं कुछ नहीं हूं, अगर कुछ है तो परमेश्वर है, उसकी इच्छा, उसकी प्रभुता, उसका मन, उसकी सब कुछ वो मेरा है, और जैसे वो चाहता है मैं उसके साथ चलने को तैयार हूं। हमारी दृष्टि बदलती है, हमारी सोच बदलती है, हमारी इच्छाएं बदलती हैं, हमारी मनसाएं बदलती हैं, हमारे कार्य बदलते हैं, और हमारा परिवर्तन परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के अनुसार होता चला जाता है। ये हृदय जो है सबसे अधिक धोखा देने वाला वस्तु है और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, इसके मन के भ्रम को भेद कौन समझ सकता है? परमेश्वर वचन कहता है लेकिन परमेश्वर है जो तुम्हारी भावना को, तुम्हारी मनसा को जांचता है। यज्ञा उसका 17 अध्याय उसका 9 और 10 पद, मन तो अधिक सत्य दौलत देने वाला वस्तु है। मेरे प्रियो अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलकर उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है तो सबसे पहली बात हमारे जीवन प्राथमिकता परमेश्वर होना है, परमेश्वर होना है, परमेश्वर होना पतरस अभी तक नहीं समझ पाया था, इसीलिए उसने बात कही। लेकिन आगे चल के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है यदि मनुष्य संसार के सर्व वस्तु को प्राप्त करे और अपने प्राण के यहाँ भान उठाए तो उसे क्या लाभ, अथवा मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे। संसार की समस्त वस्तुओं को, हमारा ध्यान संसार शरीर की, हमें संघर्ष करना पड़ता है। मसीह का जीवन अंत तक, जब तक मैं कब्र में ना चला जाऊंगा अंत तक मुझे इस शरीर शैतान और संसार से संघर्ष करना है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में अब प्राथमिकता परमेश्वर बन गया है और प्रतिदिन संघर्ष का जीवन है। चाहे समाज में जाए, चाहे बाजार में जाए, बाजार में आप जाते हैं, दुकान पे आप आते सामान लेते हैं, शायद आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम करते हैं, अच्छा भैया मुझे स्टेज दे, कितने का लुटाते हैं, इतना कमाते हैं, आपने 5 रुपए ज्यादा के लुटा दिया, क्या करा आपने, 5 रुपए तो आपको मिल गए, लेकिन इस 5 रुपए ने आपके विवेक को, आपके जीवन को, आपके शरीर को नरक की ओर किया। आपकी प्राथमिकता परमेश्वर नहीं था। आप ऑफिस में गए, मैं प्रैक्टिकल बातों को आपके सामने लाना चाहूं, आप ऑफिस में गए, आपने अटेंडेंस लगाई, साफ सुथरा सब 5 मिनट के बाद आता हूं और चले गए, और जाकर के आप पूरे दिन गायब हो गए, दूसरे दिन सर ऐसा सा हो गया था माफ कीजिएगा, लेकिन आपने पूरे दिन की अटेंडेंस लगा, क्या हुआ, क्या क्रू से जाकर चल रहे हैं, क्या आपने इंतजार कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में, घर में बिजली नहीं है, गर्मी बहुत है, पड़ोस पे कटिया लगाई है, चलो हम भी करते हैं, जो कैसा था वैसा। रेलवे स्टेशन में मैं अक्सर कहता हूँ माफ कीजिएगा, बहुत हम देश के लोग ही बात करते हैं, मैं कहता था प्रभु मुझे कभी मौका मिल दे और अन्ना हजारे से बात करने का मौका मिल जाए तो मैं पहले एक प्रश्न पूछूंगा कि आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा अन्ना हजारे एक बात बताइए, जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो क्या आप, आपके साथ 50 लोग रहते हैं, क्या रेलवे स्टेशन का टिकट लेते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, आप सबका बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप क्या सिखा रहे हैं, अगर सरकार ने कहा रेलवे स्टेशन का आपको प्लेटफॉर्म का टिकट लेना है तो आपको लेना, अरे कोई नहीं चलता, मैं भाइयों को यहां बार स्टेशन में देखता हूं और मैं उनसे बोलता हूं तो प्लेटफॉर्म टिकट एक तरह से जाना, तो कोई चीज करने वाला नहीं देखता। छोटी छोटी चीजें मैं सीखा, छोटी छोटी चीजें, और इसीलिए लिखा छोटी छोटी लोमड़ियां जो तुम्हारी दांत की बारी को बेकारती है उन्हें पकड़ लो, क्योंकि उसमें फूल लगे हुए शेष दूसरा जाता था, उन्हें पकड़ लो। ये जो क्रूस का मार्ग, जो त्याग का मार्ग है, जो क्रूस उठाकर चलने का मार्ग है, बड़ी चीजों में नहीं होता, कई बार हम छोटी छोटी में चूकते हैं, छोटी छोटी बात में हम क्रूस उठाने को चूक जाते हैं। कोई ही एक बहुत बड़ा लकड़े को लेकर, लड़के हो लकड़े को लेकर चलना नहीं है, लेकिन हमें अपने उस स्वभाव में, अपनी संसारिक इच्छाओं में, अपने दैनिक कार्यों में जो हमारी समझती है सहजता हो जाती है, जिसमें त्याग की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें कठिनाई की जरूरत नहीं पड़ती, शायद हमें लज्जा का सामना नहीं करना पड़ता या कोई ऐसा, उससे हम अगर अपने आप को नहीं रखते और समझौता करते हम कुछ दैनिक, और इसीलिए परमेश्वर से कहता हूं वो मेरे योग्य नहीं, मेरे योग्य नहीं। जरूर एक बात को ध्यान में रखिए, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का न्याय साथ साथ चलता है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसके बाद न्याय की बात करिए, इस स्तर में इसीलिए न्याय की बात करिए। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर विलंब से क्रूस पर नाले, पिछले दिनों में भैया ने बहुत अच्छे से समझाया था न्याय की पुस्तक से, लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर कोप करता है, न्याय करता है, इसीलिए आगे वो कहता है जब वो प्रत्येक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ठीक है, आज वो बलिदान हो रहा है, आज तुम्हारे सब कुछ करने तैयार है ताकि तुम उस पर विश्वास करो और उसके पत्र में चढ़ो, लेकिन जो जीवन तुम्हें स्मृति पर दिया है, संसार में दिया है, अगर तुम उसमें रहकर उसके प्रति उस प्रकार से न चढ़ो जैसे उसकी चाहना है तो तुम्हें उसका न्याय करना। यहां पर इसी बात में आगे कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत साथ पिता की महिमा में आने वाला है। अब ये जो संकेत है ये दो तरफ का संकेत है, एक और प्रभु ईश्वर संकेत कर रहे हैं, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, सब कुछ होगा, जी उठेगा, और जी उठने के बाद जो लोग उसके साथ है उसको देखेंगे, उसको देखेंगे जो भी उसकी बातों को सुन रहे हैं आगे चलते उस बात को। लेकिन दूसरी ओर वो कह रहा है कि न्याय उसके अधिकार में है, वो अब या कल वो न्याय जरूर। तो क्रूस की उठाकर चलने का मतलब क्या है, कीमत चुनाव का मतलब क्या है, यदि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु उद्धार मैं उसके लिए कीमत चुका। मेरे प्रियो मुझे कई सारे मेरी आदत है मैं जीवनों को पढ़ता हूँ, और जब मैं वाटसन नहीं की जीवन को पढ़ा था उससे मेरे जीवन को बहुत वाटसन नहीं उनके माता पिता चाइना में आकर बस गए और वहां पर एक सेवा कर रहे, और वाटसन जी की माता प्रार्थना करने लगी कि पिता परमेश्वर अगर तुम मुझे बेटा देगा तो मैं चाहूंगी वो तेरी सेवा करे, नाम रखा गया वाटमैन नाम बाद में रखा गया। और तब उसके बाद 17 साल की आयु में मां प्रार्थना करती रही कि प्रभु मेरे बेटे को तू बचा ले, तो अपने लिए इस्तेमाल कर, मां प्रार्थना करती रही। 17 साल की आयु में वाचमैन जी ने प्रभु को पा लिया, और जब प्रभु को पा लिया तो प्रभु के लिए दीवाने बन गए, बाइबल कॉलेज नहीं गए लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरम्भ किया, परमेश्वर के वचन न केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ा आरम्भ किया लेकिन कुछ लेखक थे जो उनके बहुत ही प्रिय बन गए उनकी पुस्तकों को उन्हें पढ़ा सकते, और तब उन्होंने उनको परमेश्वर ने कलीसिया का दर्शन कलीसिया कबूल किया कलीसिया के मैदान, और तब चीन में रहकर उन्होंने सुसमाचार प्रचार आरम्भ किया। जब लगभग 30 साल के वे उनका विवाह हो और जो उनकी पत्नी थी वो कुछ शारीरिक रूप से निर्बल थी, और जब लेकिन पति ने विश्वास किया, और ये धीरे धीरे इनके बारे में कहा जाता है कि सुसमाचार के कारण इनको बंदी गृह में डाल दिया गया, 20 साल तक ये बंदी गृह में, 6 महीने पहले इनकी पत्नी का देहांत हो गया, केवल उस बंदी गृह में अगर कोई मिल सकता था तो केवल उनकी पत्नी मिल सकती और कुछ नहीं मिल सकती, लेकिन उस बंदी गृह में रहते उन्होंने कितनी किताबों को लिखा, वहां रहते हुए जो भी वो सुसमाचार के बारे में बिल्कुल चुप रहे बंदी जितने बंदी थे उनको या अधिकारी जिनको भी थे हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनाते, और बंदी के नाम रहते हुए कितने लोगों ने उनके द्वारा वचन सुनकर विश्वास किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी शारीरिक दशा बिगड़ती चली, और कहा जाता है कि 1972 में उनकी मृत्यु 22 वर्ष की थी, माता पिता की जान दोस्त घर वालों किसी को नहीं बताया गया केवल एक बहन थी, और तब इन्होंने बिना चाइना की सरकार ने बिना बताए उनको जला दिया। दूसरे दिन उनकी बहन को मालूम चला कि अरे वाचमैन का नाम बाद में रखा गया, वाचमैन इसलिए नाम दिया गया उनको, उनका नाम चाइनीज नाम था यू करके कुछ था लेकिन उनका नाम करके क्या कि वो एक ऐसे व्यक्ति प्रभु ने खड़े किए जो रात्रि के अंधकार में एक वॉच है पहरेदार का काम करता, अर्थात शैतान के राज के अंधकार में वो सुसमाचार फैला रहे, इसलिए उनका नाम वाचमैन कर दिया। तब उनकी बहन आई रात को लिया और रात को लेकर पर उनकी मृत्यु के बाद आज उस नाम से जो कलीसिया है नया क्या नाम से चाइना में आज भी उनके नाम से कलीसिया है और उनके मानने वाले लोग वो मर गए, उन्होंने क्रूस उठाया मृत्यु को प्राप्त करी लेकिन उसके द्वारा आना असंख्य आत्मा को परमेश्वर के राज में मेरे प्रियो एक भूमि का दाना गिरकर मर नहीं जाता, वो भूमि के दाने के समान गेहूं के दाने समान भूमि के। आपको मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा हो कि आप इन बायोग्राफी के इनके लोगों की से भाव को पढ़े इनकी जीवनी को हिंदी में बहुत सारी चीजें पढ़ी, ऐसे ऐसे लोग हमारे भारत देश के कितने लोग हैं जिनकी मैं एक बात आपको जीवनी बता सकता हूं जिन्होंने भारत देश में अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दिया, कितने लोग मेरे प्रियो रूस उठाना मतलब है प्रभु के लिए बात करता कीमत चुकाना अपने आप से अपनी इच्छा से उठाना, और जब ऐसा है तब हम प्रभु के लिए आगे बढ़ गया एक पद के साथ का समय पौलुस का जीवन हमारे बहुत ही उदाहरण का जीवन है, लेकिन वृद्ध काम उसका 20 अध्याय 24 पद से मैं समाप्त करना चाहता हूं। वृद्ध काम 20 अध्याय उसका 24 पद पौलुस क्या कहता है मैं अपने प्राण को किसी प्रकार भी अपने लिए प्रिय नहीं समझता। रोमियो में, गलतियो में, फिलिपियो में बार बार पौलुस अपने जीवन के बारे में वर्णन करता है, उसके लिए ये संसार क्या करता है। वो कहता है मैं किसी प्रकार से अपने लिए प्रिय नहीं समझता, यदि समझता हूँ तो केवल इसलिए कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो प्रभु ने मुझे यीशु में मिली, प्रभु यीशु मसीह में मिली है, पूर्ण करो। अर्थात मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गंभीरता से गंभीरता पूर्वक साक्षी हूँ। परमेश्वर के सुसमाचार की गंभीरता पूर्वक साक्षी हूँ, ये मतलब ये क्रूस उतार गंभीरता पूर्वक। मैं सिंसियर हूँ, मैं अपने मसीह जीवन में गंभीर हूँ, मैंने मसीह जीवन को हल्का नहीं लिया है, क्योंकि मेरे मसीह जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, कीमत चुकाई है, उससे पहले कर मैंने लज्जा सही है, मैंने अपमान सहा है, मैंने क्लेश को सहा है, यहाँ तक कि उसने मृत्यु सह ली है, और उसकी मृत्यु के कारण उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने और उसके जलाए जाने, उस पर विश्वास करने द्वारा मुझे जीवन मिला, वो जीवन जो जीवन एक आनंद काल का जीवन। मेरे प्रियो, जब मेरे स्वामी ने, मेरे प्रभु ने, मेरे गुरु ने, मेरे सब कुछ जिसको मैं सब कुछ मैं मसीह समझता हूँ, सब कुछ उस पे मैं लेके आया है, और मैं अगर उसका अनुयायी हूँ, मैं उसका शिष्य हूँ, तो मुझे क्या करने को दिया सबसे बड़ा प्रश्न। और यही चीज पौलुस ने उसको जान लिया प्रश्न है कि आज हमने यीशु मसीह को कैसा जाना, यीशु मसीह कैसा, यीशु मसीह कैसा हमने माना, यीशु मसीह कैसा सुनाया है, क्या हमारे आनंद में, रोम रोम में, अपने हृदय में पूरी उसके मन मसीह भावना में वो वास करता है, या खुश दिन वो वास करता है, खुश दे सकता है जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना। क्रूस हमें पवित्रता में ले आती है, क्रूस हमें समर्पण में ले आती है, क्रूस हमें आज्ञाकारिता में ले आती है, क्रूस हमें अधीनता में ले आती है, क्रूस हमें परमेश्वर के प्रेम में, तो वो सहायता करेगा। मैं कैसा चुनिए यह विलासा है,